एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर गोता लगाने वाले हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा। बहुत पुराना, बहुत गहरा सवाल। क्या हम इस इतने बड़े ब्रह्मांड में अकेले हैं?
बिल्कुल। और ये सवाल अब सिर्फ आप कह सकते हैं कवियों या दार्शनिकों का नहीं रहा। हाल की जो वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, खासकर एक्सोप्लैनेट्स की।
हाँ, वो ग्रह जो हमारे सूरज के अलावा दूसरे तारों का चक्कर लगाते हैं।
हाँ, वही। उनकी खोज ने इस सवाल को एकदम, मतलब, वैज्ञानिक जांच के दायरे में ला दिया है। तो इसी सबको समझने के लिए आज हम वेड राउश की किताब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के जरूरी विचारों पर बात करेंगे। ये MIT प्रेस की एसेंशियल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है।
अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ उड़नतश्तरियों या हरे रंग के एलियंस की बात नहीं होगी?
नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। राउश यही समझाते हैं कि ये खोज असल में जीवन क्या है, कोई भी सभ्यता कैसे टिकती है या खत्म होती है, और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी अपनी जगह क्या है, इन सब सवालों से जुड़ी है। एक तरह से हम बाहर खोज रहे हैं पर जान अपने बारे में रहे।
दिलचस्प। तो इस सफर पर हमारा गाइड कौन है? ये लेखक वेड राउश, इनके बारे में कुछ बताइए।
जरूर। वेड राउश एक अनुभवी विज्ञान और टेक्नोलॉजी पत्रकार हैं। उन्होंने MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू जैसे बड़े नामों के लिए लिखा है, और सिर्फ पत्रकार ही नहीं, उनके पास MIT से विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इतिहास में PhD भी है।
ओहो, तो मतलब वो विज्ञान की बारीकियों को भी समझते हैं और उसके बड़े परिप्रेक्ष्य को भी।
बिल्कुल। और उनकी खासियत यही है, वो खुद भले ही एस्ट्रोनॉमर ना हो लेकिन वो इस फील्ड के जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनके काम को, उनके इंटरव्यूज को लेकर एक, मतलब, आम पाठक के लिए समझने लायक कहानी बुन देते हैं। वो सिर्फ तकनीक नहीं देखते बल्कि इस खोज के पीछे की जो हमारी जिज्ञासा है, जो दार्शनिक सवाल है, उनको भी जोड़ते हैं।
समझ गया। चलिए अब किताब पर आते हैं। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स किताब क्या करने की कोशिश करती है, इसका मकसद क्या है?
देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये किताब पृथ्वी से परे जीवन की जो खोज चल रही है उसका एक संतुलित और भरोसेमंद परिचय है। आजकल इस विषय पे बहुत सनसनीखेज बातें होती है ना, UFO, एलियन अपहरण।
हाँ, बिल्कुल।
तो ये किताब उन सबसे हटकर जो असल वैज्ञानिक तरीके हैं, जो चुनौतियां हैं, जो संभावनाएं हैं, उन पर फोकस करती है। एक तरह से ये शोर कम करके असल मुद्दे पर आती है।
और इसका मुख्य तर्क क्या है, किताब क्या कहना चाह रही है?
राउश का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि ठीक है, हमें अभी तक एलियन लाइफ का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन इस सबूत को खोजने की जो प्रक्रिया है ना, वो अपने आप में बहुत कीमती है।
प्रक्रिया कैसे?
मतलब, हमने जो नए टेलीस्कोप बनाए हैं, जो नए सिद्धांत सोचे हैं, जैसे वो ड्रेक समीकरण जिसकी हम बात करेंगे, या एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जो हमने इतना कुछ जाना है, ये सब हमें जीवन के लिए क्या जरूरी है, सभ्यताएं कैसे चलती हैं, और हम इंसान इस ब्रह्मांड में कहाँ फिट होते हैं, इन सबके बारे में सिखा रहा है। नतीजा मिले ना मिले, ये सफर ही हमें बदल रहा है।
अच्छा, तो किताब हमें इस सफर पर कैसे ले जाती है, क्या क्या कवर करती है?
राव शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड की विशालता का एहसास करा के, फिर वो दो बड़े आइडियाज पर आते हैं, ड्रेक समीकरण जो संभावनाओं को तोलता है, और फर्मी विरोधाभास जो पूछता है कि अगर संभावना है तो सबूत क्यों नहीं।
हाँ, वो सब कहाँ है वाला सवाल।
बिल्कुल। फिर वो सेटी यानी एलियन इंटेलिजेंस की खोज के इतिहास और आज के तरीकों पर बात करते हैं। एक्सोप्लैनेट क्रांति ने कैसे सब कुछ बदल दिया, इस पर खास जोर है, और आखिर में वो इस महान चुप्पी के जो संभावित जवाब है उन पर सोचते हैं। इसमें ग्रेट फिल्टर जैसी काफी गंभीर सोच भी शामिल है।
चलिए तो फिर ड्रेक समीकरण से ही शुरू करते हैं, ये क्या चीज है?
देखिए, ये 1961 में एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने बनाया था। ये कोशिश है, एक गणितीय कोशिश, ये अनुमान लगाने की कि हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे, उसमें कितनी ऐसी सभ्यताएं हो सकती हैं जिनसे हम संपर्क साध सकें। एन से दिखाते हैं इसे।
और उसका फॉर्मूला कुछ लंबा चौड़ा सा है, NR.FP.NE.FL.FI.FC.L। बापरे।
हाँ, देखने में डरावना लग सकता है पर इसमें हर चीज का मतलब है। आर है तारों के बनने की रफ्तार, FP है कि कितने तारों के पास ग्रह होते हैं, NE है कि उनमें से कितने रहने लायक जोन में है।
अच्छा, ये तो शायद अब हम कुछ बेहतर जानते हैं एक्सोप्लैनेट की खोजों से।
बिल्कुल सही। केपलर जैसे मिशनों ने दिखाया है कि ग्रह तो भाई आम है, अरबों हैं शायद, तो समीकरण के ये शुरू के हिस्से अब उतने मतलब रहस्यमयी नहीं रहे।
लेकिन फिर आते हैं बाद वाले हिस्से, FL, FI, FCL, ये क्या हैं?
हाँ, यहीं पर असली पेंच है। FL यानी उन ग्रहों पर जीवन के पनपने की संभावना, FI यानी उस जीवन से बुद्धि इंटेलिजेंस विकसित होने की संभावना, FC मतलब क्या वो ऐसी तकनीक बना पाएंगे जिसे हम डिटेक्ट कर सकें, और L सबसे मुश्किल, वो सभ्यता कितने समय तक टिक पाती है।
ओहो, ये तो जीव विज्ञान से समाजशास्त्र तक सब आ गया इसमें।
सही कहा, और इसीलिए राउश कहते हैं कि ड्रेक समीकरण का असली मूल्य N की कोई सटीक संख्या देना नहीं है, कोई नहीं जानता वो संख्या। इसका असली काम है हमारी अज्ञानता को एक तरह से व्यवस्थित करना। ये दिखाता है कि हम क्या नहीं जानते और हमें कहाँ और रिसर्च करने की जरूरत है। ये एक नक्शा है हमारी समझ की सीमाओं का।
तो ये हमें उम्मीद तो दिखाता है, लेकिन साथ ही हमारी सीमाओं का एहसास भी कराता है। और यहीं पर वो दूसरा बड़ा आइडिया आता है, फर्मी विरोधाभास।
हाँ बिल्कुल, भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी का वो मशहूर सवाल जो उन्होंने शायद लंच पर यूं ही पूछ लिया था, भाई अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना पुराना है, और जैसा कि अब हम जानते हैं रहने लायक ग्रह भी शायद बहुत सारे हैं, तो फिर अब तक किसी ने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया, कोई संकेत क्यों नहीं मिला, सब हैं कहाँ?
हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। एक तरफ ड्रेक समीकरण की इतनी बड़ी संभावना है और दूसरी तरफ जीरो सबूत।
यही है फर्मी विरोधाभास, ये जबरदस्त तनाव है संभावनाओं और हकीकत के बीच। आकाश एकदम चुप है और राउश जोर देते हैं कि ये जो महान चुप्पी यानी ग्रेट साइलेंस है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें इसे समझने की कोशिश करनी होगी।
तो इस चुप्पी को समझने या तोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सेटी का जिक्र किया था आपने।
हाँ, सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, परग्रही बुद्धिमत्ता की खोज। राउशीज इसके इतिहास को बताते हैं, कैसे फ्रैंक ड्रेक ने पहली बार रेडियो टेलीस्कोप से सुनने की कोशिश की, प्रोजेक्ट ओज्मा, और आज कैसे सेटी इंस्टीट्यूट या ब्रेक थ्रू लिसन जैसे बड़े संगठित प्रयास चल रहे हैं।
और इनका मुख्य तरीका क्या है, क्या खोजते हैं ये?
पारंपरिक रूप से मुख्य तरीका रहा है रेडियो तरंगों को सुनना, बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप लगाकर ये कोशिश करना कि कहीं कोई कृत्रिम मतलब बनाया हुआ सिग्नल मिल जाए, खासकर वाटरहोल नाम की एक खास फ्रीक्वेंसी रेंज में।
वाटरहोल, ये क्या है?
ये रेडियो स्पेक्ट्रम का एक शांत हिस्सा है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल अणुओं के उत्सर्जन के बीच। वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद कोई उन्नत सभ्यता संदेश भेजने के लिए इस शांत खिड़की का इस्तेमाल करे।
लेकिन आपने कहा था कि एक्सोप्लैनेट क्रांति ने खेल बदल दिया है।
हाँ, पूरी तरह से। पहले सेटी एक तरह से अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, हमें पता ही नहीं था कि ग्रह आम है या नहीं, लेकिन केपलर टेस जैसे मिशनों ने अब बता दिया है कि हमारी आकाशगंगा में ही अरबों ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो पृथ्वी जैसे हों और अपने तारे से सही दूरी पर हों, मतलब रहने योग्य क्षेत्र में।
तो अब हमें पता है कि कहाँ दिखना है।
हाँ, कुछ हद तक। अब सेटी के पास खास टारगेट हैं, जैसे वो ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम है, जहाँ एक छोटे तारे के आसपास पृथ्वी के आकार के 7 ग्रह मिले हैं। अब हम उन ग्रहों की तरफ अपने टेलीस्कोप ज्यादा ध्यान से लगा सकते हैं।
और क्या अब खोज सिर्फ रेडियो सिग्नल तक ही सीमित है?
नहीं, अब दायरा बढ़ गया है। अब ऑप्टिकल सेटी भी है, यानी लेजर की तेज फ्लैशेज या बीम खोजना। फिर टेक्नो सिग्नेचर की खोज है।
टेक्नो सिग्नेचर मतलब
किसी बहुत उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई किसी चीज के निशान, जैसे कोई बहुत बड़ी संरचना, शायद तारे के चारों ओर ऊर्जा सोखने के लिए बनाया गया डायसन स्फीयर, या उनके वायुमंडल में प्रदूषण के संकेत, इस तरह की चीजें। और हाँ, बायोसिग्नेचर भी।
बायोसिग्नेचर यानी जीवन के निशान।
हाँ, दूर ग्रहों के वायुमंडल की रोशनी का विश्लेषण करके उसमें ऑक्सीजन मीथेन जैसी गैसों का पता लगाना जो शायद जीवन की मौजूदगी का संकेत दें। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसमें बहुत मदद कर रहा है। और एक और बात, पृथ्वी पर ही हमने ऐसी जगहों पर जीवन खोजा है जहां हम सोचते थे संभव नहीं है, गहरे समुद्र में, ज्वालामुखी के पास, इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं।
हाँ, सुना है।
तो इससे रहने योग्य होने की हमारी परिभाषा भी बदली है, हो सकता है जीवन बहुत अलग अलग परिस्थितियों में पनप सकता हो।
इतनी सारी खोजों और तरीकों के बाद भी वो महान चुप्पी तो कायम है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? राउच क्या बताते हैं?
वो कई संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। हो सकता है वो बहुत ज्यादा दूर हों, या हमारी तकनीक अभी काफी नहीं है उन्हें सुनने या देखने के लिए, या शायद वो जानबूझकर हमसे छिप रहे हों। इसे जू परिकल्पना भी कहते हैं कि जैसे हम जानवरों को चिड़ियाघर में देखते हैं, वो हमें देख रहे हों।
अच्छा, ये तो मजेदार सोच है।
हाँ, या ये भी हो सकता है कि वो इतने अलग हों कि हम उन्हें पहचान ही ना पाए। शायद वो मशीन इंटेलिजेंस बन चुके हों, या उनका अस्तित्व किसी ऐसे रूप में हो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाली परिकल्पना है, वो है ग्रेट फिल्टर।
ग्रेट फिल्टर, हाँ, आपने पहले जिक्र किया था। ये क्या है? ठीक।
ये आइडिया है कि जीवन के शुरू होने से लेकर एक अंतरतारकीय इंटरस्टेलर सभ्यता बनने तक के सफर में कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ी रुकावट, कोई बाधा, कोई फिल्टर है। और ये फिल्टर इतना मुश्किल है कि ज्यादातर जीवन रूप इसे पार ही नहीं कर पाते।
मतलब कोई ऐसी चीज जो सभ्यताओं को आगे बढ़ने से रोक देती है।
हाँ, और यहाँ सबसे बड़ा और शायद सबसे डरावना सवाल ये उठता है कि ये फिल्टर कहाँ है? क्या ये हमारे अतीत में है या हमारे भविष्य में?
अतीत में या भविष्य में, इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब अगर फिल्टर हमारे पीछे है, मान लीजिए जीवन का धरती पर पनपना ही एक अरबों में एक वाली घटना थी, या फिर जटिल बुद्धिमान जीवन का विकास बहुत ही ज्यादा दुर्लभ था और हम किसी तरह भाग्यशाली रहे कि उस फिल्टर को पार कर गए।
तो इसका मतलब हुआ कि हम शायद ब्रह्मांड में या तो अकेले हैं या बहुत ही कम उन्नत सभ्यताओं में से एक हैं।
हाँ, ये थोड़ी उदास करने वाली बात हो सकती है, पर हमारे भविष्य के लिए शायद अच्छी खबर हो। लेकिन अगर फिल्टर हमारे आगे है।
आगे है मतलब
कि एक तकनीकी सभ्यता के लिए अगला कदम, शायद अपने ग्रह से बाहर फैलना या बहुत उन्नत बनना, किसी ऐसे जाल में फंस जाता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। कोई ऐसी चीज जिससे उन्नत सभ्यताएं लगभग अनिवार्य रूप से खुद को खत्म कर लेती हैं।
जैसे कि
परमाणु युद्ध या पर्यावरण का ऐसा विनाश जिससे ग्रह रहने लायक ना बचे, या शायद अनियंत्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या कोई ऐसी चीज जिसके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते।
तो इस नजरिए से फर्मी विरोधाभास की वो चुप्पी, वो असल में एक चेतावनी है।
हाँ, शायद वो महान चुप्पी एक ब्रह्मांडीय कब्रिस्तान की शांति है उन सभ्यताओं की जो उस फिल्टर तक पहुंची पर उसे पार नहीं कर पाई। ये वाकई एक गंभीर विचार है।
बिल्कुल, ये तो पूरी खोज को एक अलग ही रोशनी में डाल देता है। ये सिर्फ एलियंस ढूंढने की बात नहीं रह जाती, ये तो हमारे अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम वो फिल्टर पार कर पाएंगे? खासकर जब हम आज अपनी चुनौतियों को देखते हैं, जलवायु परिवर्तन, हथियारों की दौड़।
सही कहा, और यही राउश की किताब के सबसे गहरे संदेशों में से एक है। ये पूरी खोज एक तरह से हमारे लिए एक आईना बन जाती है। ये हमें अपनी तकनीक, अपनी जिम्मेदारियों और अपने अस्तित्व के जोखिमों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
किताब में कुछ ऐसे विचार या पंक्तियां हैं जो आपको खास तौर पर याद रह गईं?
हाँ, राउश सीधे कोट नहीं करते, पर कुछ आइडियाज बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे एक जगह वो इशारा करते हैं कि सबूतों का अभाव अभाव का सबूत नहीं है, लेकिन ये किसी चीज का सबूत जरूर है। शायद अंतरिक्ष की विशालता का, बुद्धि की दुर्लभता का, या बस हमारी वर्तमान तकनीक और तरीकों की सीमाओं का।
मतलब हार नहीं माननी है, खोज जारी रखनी है।
बिल्कुल। और एक और बात जो एक्सोप्लैनेट खोजों से जुड़ी है, हर एक्सोप्लैनेट खोज हमें मानवता के सबसे गहरे सवालों में से एक का जवाब देने के करीब लाती है। निश्चित उत्तर देकर नहीं, बल्कि हमें पूछने के लिए बेहतर सवाल देकर।
सही है, विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है, हर जवाब नए सवाल खड़े करता है।
हाँ, और सेटी के तरीकों के विकास पर भी एक अच्छा विचार है। हमने तारों से संदेश सुनने से शुरुआत की थी, हो सकता है हम तारों के प्रकाश में लिखे दूर के जीवमंडलों के रासायनिक हस्ताक्षरों को पढ़कर खत्म करें।
मतलब रेडियो से बायोसिग्नेचर की तरफ जाना, और वो विचार जो आपने पहले भी कहा था।
हाँ, कि अलौकिक जीवन की खोज अंततः खुद की खोज है, यह समझने के लिए कि क्या चीज हमें अद्वितीय बनाती है, या यह पता लगाने के लिए कि हम सचेत प्राणियों के एक बहुत बड़े समुदाय का हिस्सा है। यह खोज हमें अपने बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
और आखिरी वो दोनों संभावनाओं वाला।
हाँ, वो बहुत शक्तिशाली है। यदि हम अकेले हैं तो हम ब्रह्मांड के चेतना और रचनात्मकता के एकमात्र ज्ञात प्रयोग होने की भारी जिम्मेदारी वहन करते हैं, यदि हम अकेले नहीं हैं, तो हमें ब्रह्मांडीय नागरिक बनना सीखने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। दोनों ही सूरतों में हमारे लिए बड़े सबक हैं।
तो इस सब ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की सोच या जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ व्यावहारिक बातें निकलती हैं इससे?
मुझे लगता है सबसे पहली चीज है ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य अपनाना। जब हम रात को आसमान देखते हैं और सोचते हैं कि अरबों तारे हैं, अरबों ग्रह हो सकते हैं, तो हमारी अपनी चिंताएं, हमारे आपसी झगड़े थोड़े छोटे लगने लगते हैं। एक विनम्रता आती है।
हाँ, ये बात तो है, बड़ी तस्वीर देखने में मदद मिलती है।
दूसरा, लंबी अवधि की सोच। ग्रेट फिल्टर वाली बात हमें मजबूर करती है कि हम सिर्फ आज या कल का न सोचें, बल्कि अपनी सभ्यता के भविष्य के बारे में सोचें। जलवायु परिवर्तन या परमाणु युद्ध जैसे खतरे सिर्फ आज की समस्या नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। ये हमें स्थिरता और जोखिम प्रबंधन के बारे में ज्यादा गंभीर बनाता है।
और वो ड्रिक समीकरण वाला आइडिया, किसी बड़ी समस्या को छोटे हिस्सों में तोड़ना।
बिल्कुल, ये समस्या समाधान का एक अच्छा मॉडल है। जिंदगी में कोई भी बड़ी चुनौती आए, चाहे वो काम में हो या निजी जीवन में, उसे छोटे समझने लायक टुकड़ों में बांटकर देखना मददगार हो सकता है।
और शायद विज्ञान की प्रक्रिया की सराहना करना।
हाँ, विज्ञान और सबूत आधारित सोच का सम्मान। ये देखना कि वैज्ञानिक कैसे इतने बड़े रहस्य के सामने खड़े होकर भी संदेह, तर्क और डेटा के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जल्दबाजी में नतीजों पर नहीं कूदते।
और अंत में शायद मिलकर काम करने का महत्व।
हाँ, वैश्विक सहयोग, सेटी जैसे प्रयास किसी एक देश के बस की बात नहीं है। ये पूरी मानवता का साझा प्रयास है। ये याद दिलाता है कि जब बड़ी चुनौतियां सामने हो तो हमें मिलकर काम करना होता है।
तो कुल मिलाकर इस किताब से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये कि एलियंस की खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक पहेली नहीं है। ये इंसान की उस गहरी इच्छा का प्रतीक है कि वो जानना चाहता है कि वो कौन है और इस ब्रह्मांड में उसकी जगह क्या है।
और इस खोज की प्रक्रिया ने हमें पहले ही बहुत कुछ सिखा दिया है। विज्ञान में तरक्की हुई है, जीवन के बारे में हमारी समझ बढ़ी है और दुनिया को एक साथ देखने का नजरिया मिला है। राउश यही दिखाते हैं कि ये सफर खुद ही बहुत महत्वपूर्ण है।
हाँ, और वो ग्रेट फिल्टर वाली बात, वो शायद सबसे जरूरी चेतावनी है कि टेक्नोलॉजी के साथ जो ताकत आती है उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हमें अपने भविष्य को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है।
और ये जानना कि पृथ्वी जैसे ग्रह आम हैं, इसने सवाल को बदल दिया है। अब ये सिर्फ तारों और ग्रहों का सवाल नहीं रहा, अब ये जीवन का सवाल है, बुद्धि का सवाल है और सबसे बढ़कर बने रहने का सवाल है। जीवन कितनी बार शुरू होता है, कितनी बार होशियार बनता है और
कितनी देर टिकता है।
शायद इस पूरी खोज का सबसे गहरा मतलब यही है कि हमें अपने ग्रह पृथ्वी और इस पर मौजूद जीवन की कदर करनी चाहिए। ये एहसास कि हम कितने अनोखे और शायद कितने नाजुक हैं।
बिल्कुल, शायद महान चुप्पी हमें यही सिखा रही है कि अपने घर को संभाल कर रखो। ये चेतना, ये जीवन जो यहाँ है, ये बहुत कीमती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकॉटे फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।